पृष्ठ संख्या 419, अध्याय 28। अध्याय शीर्षक है रिलीजन और धर्म। रिलीजन क्या है, इसको समझने के लिए इसके शाब्दिक उत्पत्ति पर विचार करना आवश्यक है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रिलीजेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बांधना। इस दृष्टि से रिलीजन वह है जो मनुष्य को ईश्वर से बांधता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने रिकवरी ऑफ फेथ में रिलीजन शब्द के धात्वार्थ के अनुसार कहा है कि धर्म या रिलीजन शब्द के धात्वार्थ में यह भावना है कि वह एक संयोजक, जोड़ने वाली, मिलाने वाली शक्ति है। इसी पुस्तक में एक दूसरे स्थल पर उन्होंने कहा है कि धर्म या रिलीजन एक सामाजिक संयोजक, एक सीमेंट है, एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी उच्चाकांक्षाएँ व्यक्त करते हैं और अपनी असफलताओं, निराशाओं के बीच शांति एवं सांत्वना पाते हैं। रिलीजन के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन के उपयुक्त मत से यह भी सिद्ध होता है कि यह ईश्वर और मनुष्य के मध्य संबंध तो स्थापित करता ही है, इसके साथ ही मनुष्यों को भी आपस में बांधता या संगठित करता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस अर्थ में अर्थात रिलीजन का मनुष्य और ईश्वर से संबंध स्थापित करना, मनुष्यों का आपस में संबंध स्थापित करना, अंग्रेजी के रिलीजन और संस्कृत के धर्म शब्द में समानता है। इन दोनों के अनुसार रिलीजन और धर्म मनुष्य को ईश्वर से बांधना या मनुष्य को आपस में संगठित करना या बांधना है। अब शीर्षक है रिलीजन और धर्म। वैसे रिलीजन और धर्म उपयुक्त मत के अनुसार समानार्थी कहे जा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि दोनों समानार्थी तो नहीं है। फिर भी धर्म का प्रचलन रिलीजन के अर्थ में ही है। एक विचारक के अनुसार हम जिसे धर्म कहते हैं, अंग्रेजी में उसे रिलीजन कहते हैं। हमारी भाषा में रिलीजन का कोई ठीक पर्याय नहीं है। शब्दकोश में अंग्रेजी शब्द रिलीजन के कई अर्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जाति, मत, पंथ या संप्रदाय के रीति अथवा आचार कर्म को रिलीजन के अर्थ में लिया जाता है। पृष्ठ संख्या 420। नियम, प्रयोग या व्यवहार, रीति रिवाज, अधिनियम, धार्मिक या नैतिक गुण, पवित्रता, अच्छे कार्य, कर्तव्य, व्यवहार के लिए निर्धारित क्रियाविधि, सत्य, न्याय, अपक्षपात, समदर्शिता, ईश्वर भक्ति, पुण्यात्मा होने का गुण, मर्यादा या शिष्टाचार, नैतिकता, नीतिशास्त्र, स्वभाव, चरित्र, आवश्यक गुण, विशेषता, लक्षण, उपाधि विशेषण, ढंग और भक्ति आदि को भी रिलीजन का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। रिलीजन के उपयुक्त विभिन्न अर्थों के बावजूद कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसका रिलीजन धर्म से कोई साम्य नहीं है। रिलीजन के विस्तृत अर्थ को छोड़कर संकीर्णता के कारण संप्रदाय या मत या पंथ के रूप में रिलीजन को देखने का प्रयास करते हैं। यदि संकीर्णता से धर्म शब्द का भी अर्थ लगाएं तो इसे भी संप्रदाय या पंथ की संज्ञा दे सकते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। रिलीजन और धर्म दोनों को समानार्थी क्यों न माना जाए, इसका कोई कारण नहीं है। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म और रिलीजन दोनों को सामाजिक संयोजक या एक सीमेंट की संज्ञा दी है, दोनों जोड़ने वाली या मिलाने वाली शक्ति के रूप में हैं। रिलीजन या धर्म को संप्रदाय के अर्थ में लेने पर समाज और मनुष्य का संबंध विकृत हुआ है। यह धर्म का दुखद पहलू है, यह संकीर्णता का द्योतक है। वास्तव में धर्म का यह सही रूप नहीं है। रिलीजन को अध्यात्म या पारलौकिक अर्थ में लेने वाले विचारकों ने इसके सैद्धांतिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। इन विचारकों की धर्म की परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि रिलीजन संप्रदाय का द्योतक नहीं है, यह ईश्वर और मनुष्य तथा मनुष्य और समाज के संबंधों को पक्का करने या बनाए रखने की शक्ति है। फ्रेजर ने द गोल्डन बाउ में कहा है कि धर्म या रिलीजन मनुष्य में श्रेष्ठ शक्ति में एक विश्वास है, जो प्रकृति और मानव जीवन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। दूसरी परिभाषा जेम्स मार्टिन्यू द्वारा अ स्टडी ऑफ रिलीजन में दी गई है। इस परिभाषा में यह कहा गया है कि रिलीजन या धर्म अनादि और अनंत ईश्वर में वह विश्वास है, अर्थात ईश्वर के मनस और इच्छा में विश्वास, जो इच्छा ब्रह्मांड पर शासन करती है और मानव जात के साथ नैतिक संबंध रखती है। तीसरी परिभाषा मैक्टागार्ट की है, जो उनकी पुस्तक सम डॉगमाज ऑफ रिलीजन में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि धर्म मनस की एक दशा है, अर्थात यह संवग की अवस्था है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि हमारे और ब्रह्मांड के बीच समन्वय है। थूले ने इन तीनों परिभाषाओं का निचोड़ देते हुए कहा है कि धर्म अति मानवीय सत्ता या सत्ताओं से मनुष्य का व्यवहारिक संबंध है। धर्म की इन परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म किसी समुदाय या संप्रदायों का संकेत नहीं करता। इस पुस्तक में सर्वमान्य उपयुक्त धर्म की परिभाषा गैलवे की मानी गई है। इस परिभाषा के अनुसार भी धर्म किसी संप्रदाय का द्योतक नहीं है। गैलवे की परिभाषा भी अध्यात्म की ही ओर संकेत करती है। उसमें भी ज्ञान, भावना या संवेग और क्रिया या संकल्प को महत्व दिया गया है। हमने देखा है कि इस परिभाषा में पराशक्ति को स्वीकार किया गया है। इसमें आध्यात्मिकता की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। भारतीय परंपरा में भी धर्म को आध्यात्मिक अर्थ में ही लिया गया है। यदि इन परिभाषाओं का संस्कृत शब्द धर्म के अर्थ के साथ रखकर देखना चाहें तो इसमें भी पता चलता है कि धर्म का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण ही प्रमुख है। वैसे धर्म की संस्कृत वांग्मय में अनेक परिभाषाएं एवं विशेषताएं दी गई हैं, किंतु उनका मौलिक अर्थ अध्यात्म से भिन्न नहीं है। पृष्ठ संख्या 421, शीर्षक है भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म की व्याख्या। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या मिलती है। उदाहरण के लिए वेदों, उपनिषदों, गीता तथा महाभारत में धर्म के विभिन्न अर्थ बताए गए हैं। ऋग्वेद में धर्म को विश्व का आधार माना गया है। इसी प्रकार रीत तथा सत्य का अभिन्न संबंध बताया गया है। इसी तरह उपनिषद में धर्म को सत्य तथा कर्तव्य से जोड़ा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो कहा गया है कि धर्म ही सत्य है। इसी कारण सत्य वचन बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला और धर्म वचन बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। अस्तु, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। उपनिषदों तथा गीता में वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख मिलता है। बौद्ध दर्शन में नैतिकता को महत्व देते हुए अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। यही धर्म है। धर्म को जीवन पद्धति के रूप में भी भारतीय ऋषियों ने स्वीकार किया है। यदि संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि भारतीय मनीषियों ने सदाचार तथा कर्तव्य पालन को धर्म के नाम से अभिहित किया है। अब अगला शीर्षक है धर्म की परिभाषा। भारतीय दृष्टि से धर्म की परिभाषा जो विभिन्न शास्त्रों में मिलती है उनके अनुसार धर्म को जानने का प्रयास किया जा सकता है। आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार धर्म वह कार्य अथवा आचार है जिसकी प्रशंसा शिष्टजन करते हैं। इसके विपरीत शिष्टों द्वारा निंदित कर्म ही अधर्म है। धर्म को धारात्मक तत्व भी कहा गया है जो समाज को धारण करने के सामर्थ्य रखता है। महाभारत में कई स्थलों पर धर्म को इसी अर्थ में बताया गया है। धर्म शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से भी यही अर्थ निकलता है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु धृ से है जिसका प्रयोग धारण के अर्थ में किया जाता है। शब्दार्थ की दृष्टि से धर्म शब्द की उत्पत्ति तीन तरह से होती है। इसमें पहला है ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, अर्थात धर्म वह है जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाए। दूसरा है धरति धारयति वह लोक इति धर्मः, अर्थात धर्म वह है जो लोक को धारण करे। तीसरा है ध्रियते यह स धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के अनुसार धर्म के विषय में कहा गया है धर्म धरति लोकान ध्रियते पूर्ण आत्मभि इतिवा। ध्रिय धन मन, वह कर्म जिसके करने से करने वाले का इस लोक में अभ्युदय हो और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो। आइन कानून कर्तव्य न्याय किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमें सदा रहे और उससे कभी पृथक न हो। ईश्वर भक्ति कर्तव्या कर्तव्य अवधारणा विषयक शास्त्र। समानता यज्ञ सत्संग तौर तरीका। धारण करने के अर्थ के अनुसार धर्म वह है जो समाज की एकता और संगठन को स्थिरता प्रदान करे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए धर्म को संयोजक तत्व या एक सीमेंट कहा है। पृष्ठ संख्या 422। धर्म की एक परिभाषा वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी की गई है जो ऊपर बताई गई सभी परिभाषाओं से भिन्न है। इसके अनुसार धर्म को जागतिक या लौकिक उन्नति और पारमार्थिक कल्याण का साधन माना गया है। यतो अभ्युद्यान श्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात जो उन्नति और पूर्णता को प्राप्त करने वाला है वह धर्म है। मनु ने धर्म की एक व्यापक परिभाषा दी है जिसका संबंध नैतिकता और सदाचार से बताया गया है। इनके अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला है धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा संयम, चौथा औचर्य, पांचवा शौच, छठवां इंद्रिय निग्रह, सातवां विवेकशीलता, आठवां विद्या, नौवां सत्यवादिता, दसवां अक्रोध। अगला शीर्षक है धर्म समकालीन भारतीय विचारकों की दृष्टि में एक विवेचन। हम जिसे धर्म कहते हैं अंग्रेजी में उसे रिलीजन कहते हैं। हमारी भाषा में रिलीजन का कोई ठीक पर्याय नहीं है। शब्दकोश में अंग्रेजी शब्द रिलीजन के कई अर्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जाति, मत, पंथ या संप्रदाय के रीति अथवा आचार कर्म को रिलीजन के अर्थ में लिया जाता है। नियम, प्रयोग या व्यवहार, रीति रिवाज, अधिनियम, धार्मिक या नैतिक गुण, पवित्रता, अच्छे कार्य, कर्तव्य, व्यवहार के लिए निर्धारित क्रियाविधि, सत्य, न्याय, अपक्षपात, समदर्शिता, ईश्वर भक्ति, पूर्ण आत्मा होने का गुण, मर्यादा या शिष्टाचार, नैतिकता, नीतिशास्त्र, स्वभाव, चरित्र, आवश्यक गुण, विशेषता, लक्षण, उपाधि विशेषण, ढंग और भक्ति आदि को भी रिलीजन का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। इसमें संदेह नहीं कि धर्म के इन विभिन्न अर्थों को विभिन्न रूपों में लिया गया है। इसीलिए कोई धर्म को आचार नीति तक ही सीमित करता है, कोई परंपरा या रीति रिवाज या कर्मकांड निर्धारित क्रियाविधि तक ही धर्म को मानता है, या कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन के चरित्र और व्यवहार से संबंधित गुणों को ही मानवतावादी दृष्टिकोण से सर्वोपरि धर्म मानते हैं। स्पष्ट है कि आध्यात्मिक अर्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं उसका इन मान्यताओं से कोई भी संबंध नहीं है। नृतत्व विज्ञान के मर्मज्ञ विकासवादी दृष्टिकोण से जो धर्म की रूपरेखा खींचते हैं उससे भी हमारा अर्थ नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक अर्थ में धर्म का अर्थ जो ईश्वर भक्ति से लिया गया है वही हमें अभिप्रेत हो सकता है। चरम सत्ता या जीवन में सन्निहित सत्ता के सानिध्य को ही धर्म का वास्तविक रूप दिया जा सकता है। इतना अवश्य है कि यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सभी अर्थों को लिया जाए साधन के रूप में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब हम मुख्य तत्व को छोड़कर सहायक तत्वों को ही मुख्य मानने लगते हैं तो पथ से हट जाते हैं। इस दशा में अशुद्ध निर्णय और मान्यताओं पर हमारा पहुंच जाना स्वाभाविक है। धर्म के वास्तविक अर्थ में तो व्यक्ति भगवान पुरुषोत्तम महाशक्ति के सन्निकट होता है, जिसको स्वामी रामानंद जी ने प्रार्थना न कहकर अंतर्योग कहा है। पृष्ठ संख्या 423। प्रार्थना या अंतर्योग से व्यक्ति महाशक्ति में लीन हो जाता है। अंतस्थल की नीरव नितांत एकांत गुहा में आत्मा का, साधक का अपने प्रियतम प्रभु से, कृपामयी जगजननी महाशक्ति से माँ से प्रगाढ़ सम्मिलन है, अंतर्योग या इनर कम्युनियन और सत्ता का यही सानिध्य ही धर्म है। धर्म के इस स्वरूप को न ग्रहण कर पाने से ही धर्म के विभिन्न विकल्पों में पड़ते हैं। इसी से धर्म का वास्तविक अर्थ आच्छन्न हो गया। किंचित इसी दृष्टिकोण से योगी राज श्री अरविंद ने कहा है कि भारतीय धारणा के हिसाब से धर्म केवल शुभ, उचित, सदाचार, न्याय और आचार, नीति ही नहीं, बल्कि अन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति और ईश्वर के साथ मनुष्य के जितने भी संबंध हैं उन सब का संपूर्ण नियमन है, और यह नियामक तत्व ही वह दिव्य धर्म तत्व है जो जगत के सब रूपों और कर्मों के द्वारा आंतर और बाह्य जीवन के विविध आकारों के द्वारा तथा जगत में जितने प्रकार के भी परस्पर संबंध हैं उनकी व्याख्या के द्वारा अपने आप को सिद्ध करता रहता है। श्री तिलक ने गीता रहस्य में तीन प्रकार से धर्म की व्याख्या दी है, पारलौकिक, व्यवहारिक या नीति धर्म और तीसरी मीमांसकों की व्याख्या। यहाँ पारलौकिक धर्म को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से ही लिया है। यह तो धर्म शब्द का एक पहलू है। दूसरे रूप में धर्म को व्यवहारिक या समाज धर्म या नीति धर्म के रूप में भी लिया गया है। इस प्रकार इसका अर्थ व्यापक है। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को मोक्ष धर्म अथवा सिर्फ मोक्ष और व्यवहारिक धर्म अथवा केवल नीति धर्म को धर्म मात्र ही कहा करते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो अंत में मोक्ष को पृथक पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न होती। अर्थात यह कहना पड़ता है कि धर्म पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीति धर्म ही शास्त्रकारों को अभिप्रेत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्ष धर्म ही हमारे लिए अभीष्ट प्रतीत होता है, परंतु सर्वांश रूप में वह भी नहीं, क्योंकि प्रश्न उठता है कि धर्म धर्म के लिए या मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए स्वामी रामानंद महाराज जी का वह आंतर योग, वह सतत महत से संबंध नहीं प्रकट होता, एक बाह्य लक्ष्य सीमित कर देता है, कर्ता कर्म का द्वैत उत्पन्न कर देता है, भक्त की मात्र यह कामना नहीं होती। फिर भी धर्म के अन्य विभिन्न अर्थों से यह अधिक समीचीन है, क्योंकि इसका अध्यात्म से सन्निकट संबंध है। धर्म शब्द के अन्य अर्थों का हो सकता है कि कुछ सहाय संभव हो, परंतु हमारे लक्ष्य के रूप में वे सिद्ध नहीं। महाभारत में जिस स्थान पर पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान पर अर्थात शांति पर्व के उत्तरार्ध में मोक्ष धर्म इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। अन्य लेखकों ने भी धर्म के विभिन्न प्रपंचों में न पढ़कर उसके वास्तविक अर्थ को मोक्ष धर्म के ही रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जो जीवन मोक्ष अथवा पूर्णत्व की खोज करता है वह कर्तव्य पालन रूप नैतिकता से उदासीन भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के इस पहलू को मोक्ष धर्म कह सकते हैं। पृष्ठ संख्या 424। हमारी भाषा में आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग प्रायः मोक्षान्वेषी जीवन के लिए होता है। यद्यपि मोक्ष शब्द विवादास्पद अवश्य है, जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया है, परंतु यहाँ इसका अर्थ पूर्णत्व प्राप्त करने या चरम सत्ता से सान्निध्य प्राप्त करने से ही है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। योगी राज अरविंद ने भी धर्म की व्याख्या तीन रूपों में दी है। प्राथमिक रूप में धर्म, जो कि धर्म शब्द धृ से बनता है, जिसका अर्थ है धारण करना। इस धर्म शब्द का अर्थ हमारी प्रकृति का वह मूल विधान है, जो गुप्त रूप से हमारे सब कार्यों को नियत करता है, और इसलिए इस दृष्टि से प्रत्येक जीव वर्ण, प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति और समूह का अपना अपना एक विशिष्ट धर्म होता है। श्री अरविंद जी ने धर्म के प्राथमिक अर्थ को प्राचीन और वास्तविक तथा मौलिक रूप में ही लिया है। इसी से मिलते जुलते विचार संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के भी हैं। उनका कहना है कि धर्म शब्द को यदि उसके प्राचीन मौलिक अर्थ में लिया जाए तो यह किसी वस्तु या व्यक्ति की उस प्रकृति या स्वभाव को सूचित करता है जो उसमें तत्वतः निहित है, अर्थात जिसका अस्तित्व बने रहने के ही कारण उस वस्तु या व्यक्ति को कोई वैसी संज्ञा विशेष प्रदान की जाती है। उसका धर्म उसे इसी कारण धारण करता है। जहाँ तक पता चलता है, धर्म शब्द का ऐसा प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद के उस मंत्र में किया गया था, जिसमें विष्णु के तीन पदों को काम में लाना और इस प्रकार सभी धर्मों को यथावत बनाए रखना कहा गया है। त्रिणिपदा विचक्रमे विष्णु गोरपा अदाम्यः अतो धर्माणि धारयन्। इस दृष्टि से जिस प्रकार अग्नि का धर्म जलाना है, जल का शीतल होना तथा सूर्य का प्रकाश फैलाना है, उसी प्रकार कोई धर्म विशेष मनुष्य का भी हो सकता है। उस धर्म विशेष के ही कारण मनुष्य मनुष्य है, और इसके अभाव में वह निरा पशुवत प्राणी मात्र कहला सकता है। अतएव जब हम किसी धर्म विशेष का नाम लेते हैं तो साधारणतः वहाँ पर भी यही समझा जाता है कि उसके द्वारा किन्हीं ऐसे आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई होगी जो मनुष्य के उक्त मौलिक या प्राकृतिक धर्म की सुसंगति में लाए जा सकते हैं, तथा इसी कारण उनका अनुसरण करना इसके लिए परम कर्तव्य हो जाता है, और उसका पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी बनना पड़ता है। यदि हम सारे प्रमुख धर्मों में सामान्यतः पाई जाने वाली बातों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह पता चल सकता है कि उनमें कोई तात्विक भेद नहीं है, प्रत्युत वे मूलतः एक समान हैं, तथा वे किसी न किसी प्रकार उन विशेषताओं को प्रकट करती हैं जिन्हें मनुष्य के मौलिक धर्म का नाम दिया जा सकता है। अतएव किसी व्यक्ति का साधारण धर्म उसे ऐसे आदर्शों की सहायता से वस्तुतः उसके उस धर्म विशेष की ओर भी इंगित करता कहा जा सकता है, जिसके कारण वह अपने को मनुष्य के रूप में मान सकता है, तथा जिसको ध्यान में रखकर चलने पर ही उसके जीवन का सफल होना भी कहा जा सकता है। चतुर्वेदी जी इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए धर्म को किसी जीवन दर्शन का पर्याय मानते हैं, और इसी को धर्म का मौलिक तथा वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। यह जीवन दर्शन मनुष्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को परिवेष्टित करता है। इसी आदर्श को मानना ही जीवन की सार्थकता है। पृष्ठ संख्या 425। धर्म के इस मूल तत्व को न समझने के कारण लोगों ने धर्म के अन्य विकल्पों को जो प्रश्रय दिया है वह भ्रमात्मक है। धर्म को बाह्य विधान का रूप देना और उसी का अंधा अनुसरण करना धर्म का दुरुपयोग है। कदाचित धर्म के इसी दुरुपयोग के कारण आधुनिक पंडितों ने धर्म को ही सभी अनर्थों की जड़ तक मान लिया है। धर्म के प्रति इस अन्याय की धारणा उसको मौलिक तथा तात्विक रूप में न समझने के कारण ही है, या यों कहें कि कोरा भ्रम है। श्री अरविंद ने धर्म की दूसरी धारणा अंतःक्रियाओं के विधान के रूप में प्रदान की है। उनका कहना है कि हमारे अंदर जो भागवत प्रकृति है उसे भी तो हमारे अंदर विकसित और व्यक्त होना है, और इस दृष्टि से धर्म अंतःक्रियाओं का वह विधान है जिसके द्वारा भागवत प्रकृति हमारी सत्ता के अंदर विकसित होती है। यह है व्यक्ति का वह जीवन दर्शन जो उसे अपने अंतरतम में स्थित सत्ता से सानिध्य प्राप्त करने, उसको अपने में व्यक्त करने में चरितार्थ होता है। यही धर्म ज्यों-ज्यों भागवत प्रकृति हमारी सत्ता के अंदर विकसित होती जाती है त्यों-त्यों हम उसके निकट आते हैं, पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं और धर्म को मुखर करते जाते हैं। यह है अंतः का स्फुरण और बाह्य का अंतः सन्निवेश। इस धर्म में विद्वेष नहीं, अत्याचार नहीं, आलोचना और विकर्षण नहीं। कोई इसे व्यक्तिगत धर्म कह सकता है, परंतु वास्तविक धर्म यही है। यहाँ व्यक्तिगत शब्द जोड़ देने पर कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि ऐसा धर्म व्यष्टिवादी ही होकर रह जाता है, स्वार्थ की गंध है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यह है समष्टि का व्यष्टिगत सन्निवेश। बुद्ध, ईसा तथा श्री राम कृष्ण परमहंस का उदाहरण द्रष्टव्य है। जब हम सांस्तिक धर्म पर दृष्टि डालते हैं तो इसके ठीक विपरीत पाते हैं। सांस्तिक धर्म तो बाह्य आचार नीति समाज धर्म का रूप है, समाज का पोषक हो सकता है, परंतु पूर्णता का द्योतक नहीं। अगला शीर्षक है धर्म व्यष्टि और समष्टि का एकमात्र समन्वय है। इस दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो श्री अरविंद जी ने धर्म की एक तीसरी व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो बाह्य आचार धर्म के समान ही दृष्टिगत जान पड़ता है, परंतु उसका लक्ष्य भी मोक्ष धर्म या जीवन दर्शन की स्थिति में ही है। उनका कहना है कि धर्म वह विधान है जिससे हम अपने बहिर्मुखी विचार, कर्म और पारस्परिक संबंधों का नियंत्रण करते हैं, ताकि भागवत आदर्श की ओर उन्नत होने में हमारी और मानव जाति की अधिक से अधिक सहायता हो। इस परिभाषा के अनुसार व्यष्टि और समष्टि का समापन भागवत सत्ता में है। भागवत सत्ता आदर्श की प्राप्ति में ही है। यह क्रिया तभी संभव है जब व्यष्टि अपनी सभी बाह्य क्रियाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हुए एक महत्तर चेतना की ओर मुड़ता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति ऐसे जीवन दर्शन की प्रस्थापना करता है जिससे उसका जीवन ससीम से असीम की ओर, मरण से जीवन की ओर और आत्मवाद से सर्वात्मवाद की ओर अग्रसित होता जाता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार श्री अरविंद जी ने जो धर्म का एकांतिक अर्थ लिया था, अर्थात बाह्य का आंतरिकरण किया था, अंतःक्रियाओं का विधान माना था, वह इस तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार बाह्यांतर का सामंजस्य ज्ञात होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म को मानवतावादी पर्याय के रूप में ही ग्रहण करें। पृष्ठ संख्या 426। व्यक्ति ऐसे जीवन दर्शन या धर्म साथ ही अपने साथ समष्टि को लेता चलता है। भागवत आदर्श की ओर बस यही। कोई यह नहीं कह सकता कि मानवतावाद ही उसका लक्ष्य है, वही साध्य है। मानवीयवाद ऊपर से देखने पर धर्म के ही रूप में लगता है और लोगों की मान्यता किंचित इसी प्रकार की है, और ऐसे लोग धर्म के स्थान पर मानवीयवाद को ही मानते हैं। मानवीयवाद की मान्यता है कि यह संसार ही हमारी मुख्य दिलचस्पी का विषय है और मानवीयता की पूर्णता हमारा एक आदर्श है, जबकि धर्म की मान्यताएं नहीं हैं। जब जीवन की बुनियादें हिलने लगती हैं, तब जीवन के अंतिम प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं और हमसे जवाब मांगते हैं। तब अकेले मानवीयवाद से काम नहीं चलता। जीवन एक महान देन है और हमें उसे महान उच्च स्थिति में लाना है। अकेला मानवीयवाद उसे इसके लिए प्रेरणा नहीं दे सकता। मानवीयवाद का संपूर्ण बल समाज सुधार पर आधारित है, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि तत्वतः आध्यात्मिक मुक्ति का नाम धर्म है, सामाजिक सुधार का नहीं। पवित्रता तथा साधुत्व का अर्थ परोक्ष रूप में भले ही सेवा और बंधुत्व हो, किंतु वे उसका प्रत्यक्ष और सीधा अर्थ नहीं हो सकते। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म का स्थान अन्य मत मतांतर नहीं ले सकते। धर्म का तत्व एक ही होता है, उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं। हो सकता है कि समय और देश के अनुसार उसका नामकरण विभिन्न धर्मों के रूप में हो जाए, उदाहरणार्थ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आदि। इन सभी रूपों में परिवर्तन होता दिख पड़ सकता है, परंतु इसके तत्व एक ही हैं। श्री अरविंद के शब्दों में धर्म को साधारणतया सनातन और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, और इसका मूल तत्व और आदर्श है भी ऐसा ही, पर इसके रूप निरंतर बदला करते हैं, उनका विकास होता रहता है। इसके लिए श्री अरविंद जी ने अवतारों को भी स्थान दिया है, जिनसे धर्म का निर्धारण होता है। अवतार एक धर्म बतलाते हैं, आत्म अनुशासन का एक धर्म बतलाते हैं, जिससे कि मनुष्य निम्नतर जीवन से निकलकर उच्चतर जीवन में संवर्धित हो। धर्म को जो विभिन्न रूपों और नामों या संघ के रूप में पाते हैं, वह अवतारों के कार्य प्रतिपादन और विधान के कारण ही है। तत्वतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। धर्म में सदा ही कर्म के विषय में तथा दूसरे दूसरे मनुष्यों और प्राणियों के साथ साधक का क्या संबंध होना चाहिए, इस विषय में एक विधान भी रहता है। जैसे कि अष्टांग मार्ग अथवा श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता का धर्म अथवा इसी प्रकार का और कोई धर्म जो अवतार के भागवत स्वरूप में प्रकट हुआ हो। इसके बाद चूंकि मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति के सामूहिक और वैयक्तिक दो पहलू होते हैं, चूंकि जो लोग एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं उनमें स्वभावतः एक आध्यात्मिक साहचर्य और एकता स्थापित हो जाती है, इसलिए अवतार एक संघ की स्थापना करते हैं। संघ अर्थात उन लोगों का सख्य और एकत्व जो अवतार के व्यक्तित्व और शिक्षा के कारण एक सूत्र में बंध जाते हैं। अभी हमने देखा कि धर्म की अभिव्यक्ति में विभिन्नताएं होती हैं और इसी को देखकर कुछ धर्म को बाह्य रूप से समझने वाले पंडितों ने इसका विकास भी माना है। वे धर्म की उत्पत्ति आदिम मानव के साथ ही साथ मानते हैं। उनका कहना है कि धर्म का स्वरूप सर्वप्रथम वन खंडों, प्रस्तरों, बादलों, विभिन्न देवी देवताओं और पशु तथा नर बलि तक ही सीमित था, परंतु आज विकसित होकर सर्वेश्वरवाद तक पहुंच गया है, मानवतावाद के अधिक निकट है। परंतु यह मत हमें समीचीन नहीं जान पड़ता। पृष्ठ संख्या 427। धर्म एक धारण या कॉन्सेप्शन नहीं है, धर्म एक अस्तित्व या एग्जिस्टेंस है। मानव का अस्तित्व धर्म का अस्तित्व है। अस्तित्व की न उत्पत्ति होती है और न विकास। अस्तित्व का दूसरा अर्थ है पूर्ण। फिर पूर्ण की उत्पत्ति और विकास कहाँ? तो धर्म को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वाले पंडितों ने विकास की एक धारणा बनाकर एक भूल की है। विकास मानव व्यवहार का हो सकता है, उसके अंदर अनुस्यूत तथा आच्छन्न उस महत तत्व का नहीं। मानव जिस रूप में उसे प्रकट करेगा वही अव्यक्ति की विभिन्नता होगी। स्वामी रामानंद जी महाराज ने ठीक ही लिखा है, पुरुषोत्तम अणु अणु में निहित है, वह प्रकट होने के लिए सचेष्ट है, परंतु इस अव्यक्ति के साधन प्रकृति में है, अतः प्रकृति में परिवर्तन होने के लिए सचेष्ट है, परंतु इस अव्यक्ति के साधन प्रकृति में है, अतः प्रकृति में परिवर्तन आवश्यक है। महाशक्ति की शक्ति का प्रवाह सतत प्रेरित रहता है निहित चेतना पर। निहित पुरुषोत्तम का जग जाना तो आवश्यक ही है, महाशक्ति का आकर्षण तो सतत बना हुआ है, परंतु वह जगना तो धीरे धीरे होता है, धर्म का विकास नहीं। धर्म तो सनातन है, उसके ऐतिहासिक रूप को देखने पर वह जादू टोना नीम हकीमी और अंधविश्वास लगता है, परंतु इससे धर्म का अस्तित्व और महत्व समाप्त नहीं हो जाता। जहाँ तक विभिन्नता की बात है उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि जो लोग एक ही धर्म को मानते हैं उनमें भी विविधताएं भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु चाहे हम हिंदू ऋषियों को लें, बौद्ध उपदेशकों को लें, या यूनानी विचारकों को लें, या फिर ईसाई रहस्यवादियों और सूफियों को लें, इनमें पाई जाने वाली समानता आश्चर्यजनक है। सभी धर्म एक ही सत्य तत्व और निष्ठा के पोषक हैं। धर्म का मुख्य तत्व उन धर्म सिद्धांतों, उन धार्मिक मतभेदों, विधियों और उत्सवों तथा संस्कारों में नहीं जिसको देखकर लोगों ने धर्म से विरक्ति पैदा की और धर्म की विभिन्न आलोचनाएं और धारणाएं पैदा की। धर्म न तो वैज्ञानिकों की दृष्टि में है कपोल कल्पना, न तो मनोवैज्ञानिकों की ओडिपस कॉम्प्लेक्स की परिणति या आत्म सुझाव या लैंगिकता का एक प्रारूप ही है। अथवा उन्हीं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह भय या अचेतन का प्रतिफल ही है और न तो आधुनिक मानवतावादी विचारों के ढिंढोरा पीटने वाले साम्यवादियों और बुद्धिवादियों के अनुसार गरीबों की अफीम ही है। वास्तव में धर्म का मुख्य तत्व युगों की गंभीरतम बुद्धिमता में, अनवरत तत्वज्ञान में, सनातन धर्म में है। विभिन्न धर्म सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु सत्य के उन विभिन्न पक्षों और धारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कि लोग विश्वास करते हैं। वे उस एक ही सत्य की विविध ऐतिहासिक अभिव्यक्तियाँ हैं जो अपनी प्रामाणिकता की दृष्टि से सार्वभौम और सार्वलौकिक है। हमने इस ओर पहले भी संकेत किया था कि धर्म के दो रूप मिलते हैं, सांस्थिक और वैयक्तिक। यह विस्तृत रूप में विचारणीय है। इन दोनों में धर्म का कौन सा रूप हो सकता है? वास्तव में दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। यद्यपि संस्थाओं को लेकर धर्म में बड़े वितंडावाद खड़े हुए, लोग उसी को धर्म समझने लगे, परंतु संस्था धर्म नहीं है। संस्था धर्म के लिए हो सकती है, धर्म संस्था के लिए नहीं। पृष्ठ संख्या 428। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर धर्म की साधना के लिए प्रतीक के रूप में सहायक हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे भ्रष्टाचार के आधार बन जाएं। धर्म तो व्यक्ति के हृदय, अंतःकरण और अनुभूति के ही निकट है। फिर भी ससीम से असीम की ओर बढ़ने के लिए कुछ प्रतीकों का, कार्य विधानों का, जैसा कि श्री अरविंद ने बतलाया है, आश्रय लेना पड़ता है। फिर तो ससीम ही असीम बन जाता है, व्यक्ति ही पूर्ण तत्व को प्राप्त करता है, संस्थाएं नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमें मंदिर में जन्म लेना चाहिए, परंतु उसी में मर नहीं जाना चाहिए। सच कहा जाए तो प्रतीकवाद असीम का ससीम दर्शन है। प्रतीक कोई अपने स्वभाव से ही असीम को ससीम का विषय नहीं बना देते, वे ससीम को पारदर्शक बना देते हैं, जिससे हम उसके बीच में से असीम को देख सकें। चाहे जो हो, धर्म की एक ही संज्ञा है। संस्थाएं साधन का कार्य कर सकती हैं, वे धर्म नहीं। धर्म का वाहक व्यक्ति होता है, उसी का जीवन धर्ममय होता है। धार्मिक अनुभूतियाँ व्यक्ति को होती हैं, मंदिर या गिरजाघर को नहीं। व्यक्तिगत पहलू ही धर्म के अन्य पहलुओं का स्रोत है। अतः धर्म जेम्स के अनुसार संपूर्ण के रूप में जीवन पर मनुष्य की गई प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया मनुष्य की आकस्मिक प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। हम आकस्मिक प्रतिक्रियाओं को जीवन में भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम भूख, प्यास, काम, सम्मान, प्राप्ति आदि के लिए विभिन्न क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं से मानव जीवन की विशिष्ट आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है, परंतु धर्म की प्रतिक्रिया मानव की संपूर्ण के रूप में प्रतिक्रिया है। इसमें मानव की सभी इच्छाएं, वासनाएं, अनुभूति अर्थात इच्छा, ज्ञान, क्रिया किसी एक महत चेतना की ओर उद्बुद्ध हो उठती है। उसकी सभी क्रियाएं सत्यम, शिवम, सुंदरम में समाहित हो जाती है। जीवन में एक पूर्ण समंजन होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी संपूर्ण क्रियाओं को गंभीर स्वरूप में किसी महत के प्रति समर्पित कर देता है, जिससे उसको सफलता प्राप्त होती है। उसमें दुख नहीं, आनंद, भय नहीं, साहस का संचार होता है। वह महत के समक्ष सब कुछ अर्पित कर निर्भय और निर्मल बन जाता है और कह उठता है, मैं तू ही हूँ। यहाँ जेम्स का दृष्टिकोण चाहे व्यवहारिक ही क्यों न हो रहा हो, यदि वह हमारे लक्ष्य सिद्धि का समर्थक प्रतीत होता है तो हमें स्वीकार करने में आपत्ति नहीं। उसने धर्म को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है, धर्म का अर्थ मानव के व्यक्तिक और उसके एकांतिक जीवन के भावनाओं, क्रियाओं और अनुभूतियों से है, जिससे कि वह अपने को किसी दैवी सत्ता से संपर्क मानता हुआ समझता है। जेम्स ने इसी संबंध में एक प्रश्न भी उठाया है कि यदि परिभाषा को संकीर्ण दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाएगा तो अवश्य ही यह प्रश्न किया जा सकता है कि बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, परंतु संसार उनको धार्मिक कहता है। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध की प्रसिद्धि एक ईश्वर के ही रूप में है, यद्यपि बौद्ध धर्म को नास्तिक कहा जाता है। उसी प्रकार कुछ आधुनिक आध्यात्मवादी जो ईश्वर की पराशक्ति या सर्वातिशायी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी दैवी सत्ता निर्गुण है, एक व्याप्त शक्ति है। उनके लिए विश्व की रचना आध्यात्मिक है। सर्वातिशायी धर्म का समर्थक इमर्सन है। वह अमूर्त नियमों की आराधना को धर्म मानता है। उसने एक विश्व आत्मा की कल्पना की है और उसके प्रति इमर्सन की जो आस्था और उसका विश्वास है वह धर्म की ही कोट में है। पृष्ठ संख्या 429। जेम्स ने स्पष्ट ही कहा है कि इमर्सन ने आशावाद और बौद्ध धर्म के निराशावाद में जो प्रेरणा निहित है और जो व्यक्ति तथा उसकी क्रियाओं को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, वह किसी भी धर्म के सर्वोत्तम प्रेरक तत्वों तथा क्रियाओं से भिन्न नहीं है। हम किसी भी दैवी या अर्धदैवी विश्वासों को धर्म कह सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि धर्म की परिभाषा में जो दैवी शब्द आया है उसका अर्थ संकुचित रूप से नहीं करना चाहिए। इसको तो बृहद रूप में ही ग्रहण करना वांछनीय है। दैवी शब्द कोई निश्चित या रूढ़िपूर्ण शब्दों में नहीं है। हाँ, दैवी से अर्थ ईश्वरीय या ईश्वर या ईश्वर तुल्य है, चाहे वह सगुण हो या निर्गुण। जेम्स ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य के धर्म का तादात्म्यीकरण उसकी मनोवृत्तियों से हो सकता है। यदि वह आदि सत्य के विषय में हो और इसी प्रसंग में उसने जीवन पर संपूर्ण के रूप में की गई प्रतिक्रिया को धर्म कहा है। जेम्स के भी विचारों से धर्म एक व्यक्ति के जीवन दर्शन के समान ही प्रकट हो रहा है। धर्म में व्यक्ति की सभी क्रियाएं एक दृष्टि प्राप्त कर लेती हैं जो उसके जीवन के प्रति होती रहती हैं। इसी प्रकार व्हाइट हेड कहता है कि धर्म वह क्रिया है जो व्यक्ति अपनी एकांतता के साथ करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जेम्स की भांति यह भी धर्म को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में ही मानता है, क्योंकि मनुष्य केवल सामाजिक प्रपंच मात्र नहीं है। वास्तविक रूप में धर्म का संबंध व्यक्ति से है। धर्म व्यक्ति को सनातन सत्य की अनुभूति के लिए योग्य बनाता है। इसका मुख्य तत्व यही है कि यह व्यक्ति को अव्ययरहित रूप में सत्य का व्यक्तिगत अनुभूति कराता रहे। धार्मिक संस्थाएं और संप्रदाय तो धार्मिक अनुभूति के पश्चात ही आविर्भूत होते हैं। धार्मिक अनुभूतियों का जो महत्व है वह उनका नहीं। धर्म मानव जीवन की आदर्श संभावनाओं की खोज का एक प्रयत्न है। निरर्थक, अहंकारपूर्ण और क्षुद्र भावनाओं के अव्यवहित दबाव से मुक्ति के लिए एक साधन है। धर्म जब तक परंपरागत विचार का पल्ला छोड़कर व्यक्तिगत अनुभव नहीं बनता, तब तक वह सच्चा धर्म नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म आभ्यंतर और व्यक्तिगत चीज है, जो सब मूल्यों का एकीकरण और सब अनुभवों का संगठन करती है। यह समग्र यथार्थ सत्ता के प्रति समग्र मानव की प्रतिक्रिया है। हम धार्मिक विषय को अपनी समग्र मनः शक्तियों और ऊर्जाओं में खोजते हैं। समग्र मानव की यह क्रिया आध्यात्मिक जीवन कही जा सकती है, जो मात्र बौद्धिक, नैतिक या सौंदर्य बोधात्मक क्रिया या उन सबके सम्मिश्रण से एक सर्वथा भिन्न क्रिया है। एक स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है कि भावना, संवेग और भाव, नैसर्गिक वृत्ति, पूजा और कर्मकांड, प्रत्यक्षानुभव और विश्वास, इन सबको धर्म कहा जाता रहा है। और अपने भावात्मक अर्थ में ये सब विचार ठीक भी हैं, परंतु अपने अभावात्मक या निषेधात्मक अर्थ में वे गलत हैं। ये विचार जहाँ किसी वस्तु को धर्म कहते हैं वहाँ तक वे सही हैं, किंतु जहाँ ये अपने सिवाय बाकी सबको अधर्म कहते हैं वहाँ ये सही नहीं हैं। तो यह हम देख ही चुके हैं कि धर्म का वास्तविक संबंध व्यक्तिगत जीवन से ही है। संस्थाएं और संप्रदाय तो इसके पश्चात के आविर्भाव हैं, उनको ही धर्म नहीं माना जा सकता। हाँ, यह तो संभव ही है कि उन संघों और संस्थाओं से धर्म का वैयक्तिक पहलू समष्टि का कल्याण कारक होता है। पृष्ठ संख्या 430। अनुभूति के पश्चात ही पहले नहीं व्यवहार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तब तो व्यवहार आवश्यक भी हो जाता है। व्यष्टि फिर समष्टि का हो जाता है। स्वामी रामानंद जी ने इसी स्तर पर कहा है, व्यक्ति की साधना भी वास्तव में व्यक्ति के लिए न हो, समष्टि के लिए हो। यद्यपि इस भाव का साधना के आरंभ में समझ में आना कठिन है, परंतु साधना के पथ पर आगे चलकर यह वस्तु स्थित हो ही जाती है। वह जीता भी अपने लिए नहीं, ठीक तो यह है कि वह जीता है जीने के लिए। उसका जीवन ही यज्ञ है, सेवा है। यह है आंतरिक अनुभूतियों का बाह्य उपयोग, यह है आंतरयोग का बाह्य स्फुरण। यदि हम कांट की तरह धार्मिक अनुभव और नैतिक चेतना को एक बनाने का प्रयत्न करते हैं तो स्पष्ट है कि इन दोनों क्रियाओं के भिन्न भिन्न लक्षणों की उपेक्षा करते हैं। धर्म केवल नैतिक मूल्यों की चेतना ही नहीं है तो फिर अंतर क्या? अंतर अस्पष्ट है। धर्म में कुछ रहस्यात्मक तत्व हैं, वास्तविक सत्ता का एक निरपेक्ष बोध और उसका निरपेक्ष आनंद है, जो नैतिक चेतना में नहीं होता। इस अर्थ में धर्म रहस्यवाद के समकक्ष ही है। धर्म और धार्मिक अनुभूतियों को कुछ लोगों ने रहस्यवादात्मक धर्म तक की संज्ञा दी है। सांस्थिक धर्म तथा रहस्यात्मक धर्म में अंतर बतलाते हुए कहा है कि जहाँ एक कर्मकांड उत्सव और संस्थाओं पर निर्भर करता है, वहाँ दूसरा आभ्यांतरिक दृष्टि पर। उनके अनुसार रहस्यात्मक अनुभूति धार्मिक अनुभूति ही है, जो प्रत्यक्ष अव्यवहित और अंतरंग रूप में होती है। स्टेस के अनुसार यदि धर्म का अर्थ सांस्थिक मत संप्रदाय या सिद्धांत के रूप में लिया जाता है तो रहस्यवाद का धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरे रूप में यदि धर्म का अर्थ बौद्धिक मतों और सिद्धांतों की अपेक्षा अनुभूति के रूप में लिया जाता है जो पवित्र तथा दैवी होती है, तो वह अवश्य रहस्यात्मक अनुभूति के रूप में मानी जा सकती है। इस धारणा के अनुसार अनिश्वरवादी समझे जाने वाले धर्म जैसे कि बौद्ध और जैन भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसा कि जेम्स ने भी इसे स्वीकार किया है। स्टेस के अनुसार रहस्यवाद पूर्णतः स्वतंत्र है, इस अर्थ में कि इसका अस्तित्व बिना किसी धर्म या मत के ही है। परंतु धर्म और रहस्यवाद इस अर्थ में एक दूसरे से संबंधित और अभिन्न है कि दोनों लौकिक क्षितिज के परे अनंत और सनातन की ओर दृष्टि रखते हैं, और इसलिए भी कि दोनों में दैवी एवं पवित्र भाव निहित है। रहस्यवाद को यदि धर्म के रूप में देखने का प्रयास करते हैं तो केवल इसी रूप में कि यह मानव के मौलिक एवं स्वाभाविक धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उस रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता जो धर्म मजहब पंथ या संप्रदाय विशेष का रूप ग्रहण करता है, क्योंकि इनमें ऐसे तत्व निहित होते हैं जिनका संबंध रहस्यवाद से बिल्कुल नहीं है। उदाहरणार्थ कर्मकांड, सृष्टि शास्त्र, ईश्वरीय शास्त्र आदि ऐसे अनेक अंग हैं जो रहस्यवाद के लिए महत्वहीन हैं। इनसे केवल मजहबी और सांप्रदायिक विप्लव ही हुआ करते हैं। विज्ञान के साथ भी ऐसे धर्म का कोई मेल नहीं है। रहस्यवाद से विलग धर्म की धारणा के आधार पर हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म को धर्म की संज्ञा नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वह तो इसके सदा विपरीत है। अतः जब हम धर्म का अर्थ व्यापक कर दें तो अनिश्वरवादी धर्मों को भी धर्म की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। इस अर्थ में स्वीकार करने पर अनिश्वरवादी धर्म रहस्यवाद और धर्म दोनों की कोटि में आ जाते हैं। इसी तथ्य को स्टेस ने भी स्वीकार किया है। पृष्ठ संख्या 431। इन दोनों में आंतरिक अनुभूति को ही महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। स्टेस ने रहस्यवादी NM की अनुभूतियों का उद्धरण दिया है, जिससे यही प्रकट होता है कि रहस्यात्मक अनुभूतियाँ धार्मिक ही हैं, परंतु इस धर्म कोट की नहीं जो मजहबी रूप में हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि मेरा यह अनुभव धार्मिक कोट का है, किंतु फिर भी मैं इसका संबंध किसी ऐसे धर्म या संप्रदाय के साथ जोड़ना असंगत समझता हूँ जिनकी संस्थाएं चल रही हैं। मेरी तो यहाँ तक धारणा है कि जितने सुव्यवस्थित धर्म व संप्रदाय दिख पड़ते हैं वे स्वभावतः रहस्यवादी भावना के विरुद्ध पड़ते हैं। सारांश यह है कि रहस्यात्मक अनुभूति को धार्मिक अनुभूति की संज्ञा प्रदान की जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार तो धार्मिक जीवन निवर्तन या पीछे हटना और पुनरावर्तन की एक लयबद्ध गति है। व्यक्तिगत एकांत में निर्वतन जो विचार और चिंतन की आवश्यकता का द्योतक है और समाज के जीवन में पुनरावर्तन एकांत की गतिविधि दो रूप धारण करती है। बौद्धिक जो दर्शन और धर्म विज्ञान की ओर ले जाती है और भावात्मक जो रहस्यवाद में परिणत होती है। ये दोनों धार्मिक जीवन के अव्ययभूत अंग हैं। जेम्स भी रहस्यवादी और धार्मिक व्यक्ति को जो बहुधा एक ही कहे जाते हैं समान ही समझते हुए ज्ञात होते हैं। उन्होंने व्यक्त किया है कि धार्मिक व्यक्ति जिस विशिष्ट ढंग से सत्य का साक्षात्कार करता है वह ढंग विशेष रहस्यवाद है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार तो भारत का रहस्यवादी धर्म ही नए विश्व का धर्म बनने वाला है। इस रहस्यवादी धर्म का कथन है कि आध्यात्मिक वस्तुएं वैयक्तिक हैं और हमें उन्हें अपने जीवन में प्रतिबिंबित करना चाहिए। संसार में ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों से विमुख होकर साधना की कसौटी पर खरे उतरकर नई ऊर्जा तथा संकल्प और सत्य की ज्योति लेकर संपूर्ण जगत को द्योतिमान कर दिया है। ऐसे महापुरुष प्रत्येक युग में समय समय पर होते रहे हैं और जिन्हें देवदूत पैगंबर तथा अवतार की संज्ञा प्रदान की जाती रही है। संत मूसा ईसा बुद्ध शंकर महावीर स्वामी मोहम्मद साहब गुरु नानक आदि महापुरुष ऐसे ही धर्म के उपदेष्टा रहे हैं। इनके नाम से जाति और देश का भी नाम जुड़ता गया। संस्थाएं बनती गईं, मजहब पंथ बनते गए, साथ ही संकीर्णताएं घुसती गईं। परंतु धर्म के तत्वों से अभिभूत उन महापुरुषों का व्यक्तित्व सनातन है। उनकी अनुभूतियों में कोई विलगाव नहीं है। इनकी अनुभूतियां मानव जात के लिए हैं। मानवता का संदेश उनकी वाणी से मुखरित हुआ है। इनकी अनुभूतियों में मानवता सन्निहित है। मानवतावाद अलग से कोई धर्म नहीं है। हमने इन्हीं महापुरुषों के संदेशों को धर्म विशेष के नाम से पढ़ा है। इनमें मानव की आध्यात्मिक पिपासा शांत करने की क्षमता है। ये धर्म विशेष केवल नैतिक कोष नहीं है, यह तो पूर्णता की आकांक्षा को संतोष देने वाले हैं, जीवन के लक्ष्य हैं। अध्याय 28 समाप्त।